ओम ब्रह्म सत्यम विषय है गुरु कौन और उसकी आवश्यकता। सबसे पहले गुरु कौन है इसके बारे में महाराज जी ने खुद क्या लिखा है संता विलास में, उसके चार वचन मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक चैप्टर है इसमें गुरुपद का सिद्धांत, उसके पहले चार वचन है। वचन नंबर एक, गुरु शब्द का अर्थ यह है कि अंधकार को नाश करने वाला। गुरु शब्द का अर्थ यह है कि अंधकार को नाश करने वाला। वास्तव में तो गुरु एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है जो तमाम भ्रम अंधकार से निर्मल है और तमाम भ्रम अंधकार को नाश करने वाला है। अखंड प्रकाश घट घट व्याप रहा है, उस परम तत्व को जब बुद्धि अनुभव करती है तब सब अंधकार से पवित्र होकर प्रकाश स्वरूप में लीन हो जाती है। यहां कह रहे हैं कि वास्तव में तो गुरु एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है जो तमाम भ्रम अंधकार से निर्मल है और तमाम भ्रम अंधकार को नाश करने वाला है। तो यही गुरु शब्द की जो है असली व्याख्या की हुई है कि गुरु वास्तव में शब्द रूप परमेश्वर है। प्रारंभ में भी आपको बताया गया था, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, प्रारंभ में केवल ईश्वर था और वर्ल्ड वाज गॉड, गॉड क्या था, ईश्वर क्या था, शब्द ही था। तो अब यहां वो करें कि वास्तव में गुरु शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है जो घट घट व्यापक है। इसका मतलब गुरु कोई नाम रूप नहीं होता, गुरु ब्रह्म स्वयं ही है और सबके अंदर वो स्थित है। इसलिए गुरु का जो असली स्वरूप है वो आंतरिक गुरु ही है। आगे वो कह रहे हैं, संसार की विचलित हालत में संसारी नीति का ज्ञान भी जिससे प्राप्त होवे वो संसारी गुरु माना जाता है। यानी इस जीव को हर वक्त शिक्षा की जरूरत है, बगैर शिक्षा के सांसारिक तथा परमार्थिक बोध नहीं हासिल कर सकता है। ये गुरु की जनरल डेफिनेशन है कि जिससे भी हम कोई ज्ञान अर्जित करते हैं उसको हम गुरु कहते हैं। हमने फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स का गुरु बनाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़नी है तो मैथमेटिक्स का गुरु बनाएंगे और संसार की कोई चीजें सीखनी है तो संसारी गुरु बनाएंगे। जैसे योगासन सीखते हैं तो योग का भी गुरु बनाते हैं। तो बगैर शिक्षा के सांसारिक तथा पारमार्थिक बोध नहीं हासिल कर सकता है, लेकिन परमार्थ की शिक्षा ग्रहण करने के लिए परमार्थिक गुरु चाहिए। उसके बारे में क्या तीसरा वचन है ये वो बता रहा है आपको। परमार्थिक गुरु वह ही हो सकता है जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थिति हासिल की हो और तमाम तृष्णा विकार से जो पवित्र हो चुका हो, यानी हर वक्त अपने अंतर विखे परम प्रकाश में जो लीन रहता हो। जो परमार्थिक गुरु है उसकी क्या पहचान है कि वो तृष्णा विकार से पवित्र हो चुका, उसके अंदर एक भी किसी भी प्रकार की इच्छा बाकी ना बची। और इतना ही नहीं, जो अपने अंतर विखे परम प्रकाश में लीन रहता है। तो परम प्रकाश क्या हुआ, वही शब्द रूप परमेश्वर जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसमें हर वक्त लीन रहता हो, इसका मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है वो ब्रह्म ही गुरु है। इसीलिए गुरु को ब्रह्म ऋषि भी कहते हैं, जो ब्रह्म का दृष्टा है, ब्रह्म में जो स्थित है वही गुरु है। इसीलिए देखने में तो वो नाम रूप नजर आता है, वास्तव में वो स्वयं ब्रह्म ही है। चौथा वचन, सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते हैं, जैसा कि हम कई बार धोखा खा जाते हैं। सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते हैं, बल्कि ईश्वर स्वरूप में जो आनंदित हुआ हो वह असली गुरु है। सिर्फ रास्ता जानने से गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है, जब तक कि वो अपनी सत श्रद्धा और प्रेम भक्ति से अंतर्गत में परमेश्वर में लीन ना हो जावे। अब जो अंतर्गत परमेश्वर जो हमारे है उसमें वो लीन हो गया तो अब बताइए वो क्या रह गया, उसका कोई सेपरेट एंटिटी रह गई क्या? मैं जीव हूं, मेरे अंदर भी चेतना है, लेकिन जो ईश्वर है उसमें भी चेतना है, लेकिन मुझ में ईश्वर में कितना अंतर है? मैं अपूर्ण हूं, ईश्वर पूर्ण है। तो गुरु वो तभी हो सकता है जब अंतर यामी जो परमेश्वर है उसमें वो लीन हो गया हो, तब वो गुरु कहलाने का हकदार है। इसका मतलब क्या हुआ? वो ईश्वर ही है, उसमें लीन हो गया, क्या है गया? ईश्वर ही। तो मैं यदि बोल रहा हूं तो ये जीव सत्ता बोल रही है, गुरु यदि बोल रहा है वो ईश्वर सत्ता बोल रही है। इसलिए उसका जो वचन है, उसका जो मार्गदर्शन है, वो सीधा का सीधा ईश्वर का मार्गदर्शन है, वो किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं। अब गीता में देखिए इस गुरु के बारे में क्या लिखा हुआ है। गीता के चौथे अध्याय में एक छठा श्लोक है, वहां कहते हैं भगवान कृष्ण, अजो अपि सन अव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरः अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। कहते कि अजन्मा और अविनाशी होने पर भी और सारे प्राणियों का ईश्वर होने पर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। तो जिस गुरु से हमारी भेंट होती है या जिस गुरु के मार्गदर्शन में हम चलते हैं, तो वो गुरु है कौन? वास्तव में वो साक्षात ईश्वर ही है, और जो उसकी शक्ल नजर आ रही है, जो उसका रूप नजर आ रहा है, वो प्रभु की योग माया है। तो उस देह से वो ईश्वरीय सत्ता हमको डायरेक्ट गाइड कर रही है, डायरेक्ट हमारा मार्गदर्शन कर रही है। नहीं तो ये बात गीता में क्यों लिखी होती? इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि गुरु मंत्र ईश्वर एक चीज। मंत्र तो आपने सुन लिया कि मंत्र कैसे ईश्वर होता है, तो आज सुन रहे हैं कि गुरु कैसे ईश्वर होता है। इसीलिए हम इस वहम में ना रहें कि गुरु कोई अलग चीज है और ईश्वर कोई अलग चीज है। महर्षि रमण से किसी ने एक बार प्रश्न किया, महर्षि यदि किसी एक गुरु पर श्रद्धा हो तो क्या दूसरे गुरु पर भी श्रद्धा की जा सकती है? जैसे कि महाजी जब थे तो उसी काल में महर्षि रमण भी थे, महाजी नॉर्थ में थे, महर्षि रमण साउथ में थे, एक ही वक्त में ये दो गुरु विराजमान है। तो एक व्यक्ति के मन में ये बात आ सकती है कि एक गुरु तो यहाँ बैठा हुआ है तो क्या दूसरे गुरु पर भी श्रद्धा लगा सकती है? अब महर्षि रमण समझ रहे हैं इसके मन में क्या चल रहा है, ये गुरु को क्या समझ रहा है। तो महर्षि रमण उनको क्लैरिफाई करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं कि गुरु केवल एक है, गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। अब देखिए ना, गुरु क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है, पूर्ण गुरु, ये ध्यान देने की बात बड़ी छोटी सी है लेकिन इसमें बहुत गहरा राज छिपा हुआ। ऐसे ही क्या हुआ, एक बार स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, तो लास्ट में उनको गले का कैंसर हो गया था। तो उनकी हालत ये थी कि पानी तक वो पीने में असमर्थ थे। उस समय विवेकानंद का नाम तो नरेंद्र था, लेकिन नाम बाद में पड़ा उनका। तो नरेंद्र के मन में आया, ये कैसे परमेश्वर हैं कि जो पानी तक पीने में असमर्थ, खा गया मुमकिन, क्योंकि वो तो शरीर ही देख रहे थे। अब देखिए, गुरु अंतर्यामी होता है, वो अंदर की बात जान लेता है। उन्होंने समझ लिया कि ये क्या सोच रहा है। अब रामकृष्ण परमहंस खुद बोलते हैं नरेंद्र से कि नरेंद्र, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस देह में राम कृष्ण। साफ कर दिया ना, जो बात महर्षि रमण कह रहे हैं, जो वही बात रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, वही बात अभी आपने संत रविदास से सुनी। तो गुरु के अंदर कोई वहम नहीं है। ये जो हम भेद करते हैं गुरु गुरु में, ये हमारा दृष्टिकोण है। एक बार महाराज जी के एक शिष्य थे बाबू अमोलक राम, जिन्होंने ये जीवन गाथा लिखी है जिसका जिक्र कल जिन्होंने साथ कर रहे थे। तो महाराज जी पहले प्रेमियों के घर भी चले जाया करते थे। तो एक दिन महाराज जी जब, उस समय ये पाकिस्तान नहीं बना था, उस समय महाराज जी जब एक बार बाबू अमोलक राम जी के घर गए, तो उन्होंने क्या देखा कि ये अपने अंदर पुराने गुरु का जो नाम था वो जाप कर रहा था। उन्होंने जो उसको नाम दिया वो उसका जाप ये नहीं कर रहा। तो उन्होंने बाबू अमोल राम से बोला, बाबू तुम्हें अभी इन पर विश्वास नहीं आया, तो अभी वही पुराने गुरु का नाम जाप कर रहे हो। अब वो चौंक गए, अरे गुरु ने मेरे अंदर की बात कैसे जान ली। तो अब उनको ये बोध हो गया कि वास्तव में गुरु कोई ये बाहर की चीज नहीं है, ये गुरु अंतर्यामी है। उस दिन से फिर उन्होंने जो है वो गुरु की बात मानकर उसके हिसाब से उन्होंने अपनी साधना शुरू की। एक और देखिए, एक महर्षि रमण के शिष्य हैं राघवाचार्य। इन बातों से पता लगता है कि गुरु वास्तव में क्या होता है। एक बार वो मन में अपने तीन बातें सोचकर महर्षि रमण के पास वो गए। पहली बात उन्होंने ये सोची कि मैं महर्षि रमण के पास जा रहा हूं मिलने के लिए, मेरी उनसे भेंट अकेले में होनी चाहिए ताकि अकेले मेरी बातचीत हो जाए। फिर दूसरा प्रश्न सोचा था उन्होंने, ये क्रिश्चियंस की एक थियोसॉफिस्ट की सोसाइटी होती है, तो ये थियोसॉफिस्ट लोग जो ये कैसे होते हैं, ये क्या है, इसके बारे में महर्षि रमण का क्या कमेंट है वो जानना चाहता। तीसरी बात, गुरु के असली रूप पे वो दर्शन करना चाहता, वास्तव में गुरु का असली रूप क्या है। ये तीन चीजें वो मन में सोचे। उस समय महर्षि रमण स्कंद आश्रम जो गुफा थी उसमें वो रहा करते थे। उस समय नीचे आश्रम का निर्माण नहीं हुआ था, अरुणाचल हिल है तिरुवन्नमलाई में, उसी पर ये गुफा थी। जब ये पहुंचे तो देखते हैं कि 8-10 लोग महर्षि रमण के पास पहले से बैठे हुए। खैर ये जाकर बैठ गए, तो 5-7 मिनट में एक एक करके सारे व्यक्ति वो बिना कहे चले गए और ये अकेले रह गए। तो पहली बात तो जो मन में थी वो पूरी हो गई। फिर थोड़ी देर बाद महर्षि रमण बिना पूछे खुद ही बोल पड़े, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये अच्छा काम कर रही है, मतलब कि इसमें कोई नाटक नहीं है, कोई बनावट नहीं है, शुद्ध लोग। अब दूसरी भी उनकी इच्छा जो है वो पूरी हो गई। अब तीसरी बात उन्होंने फिर महर्षि रमण से पूछी कि मैं गुरु के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी, फिर वो शांत हो गए। महर्षि रमण ने कोई जवाब नहीं दिया उनको। लेकिन क्या देखते हैं कि महर्षि रमण का धीरे धीरे सारा आकार जो है वो गायब हो गया, एक आउटलाइन केवल उनकी उसके पश्चात पूरा का पूरी देह उनकी एक प्रकाश पुंज में कन्वर्ट हो गई, प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गई। उसके बाद फिर वो सारा दृश्य बिल्कुल से ब्लैक हो जाता है ना, इस तरह हुआ। फिर वही उनको उनके देह की आउटलाइन नजर आई, फिर वो गुरु जो नॉर्मल थे शरीर उनका नजर आ गया। कोई बात नहीं, उन्होंने ये सारी चीज देखी, उसके बाद बातचीत कोई हुई नहीं, वो अपने चले आए राघवाचार्य। एक महीने के बाद फिर गए वो महर्षि रमन के पास। अब जाकर उन्होंने जो है वो उन्होंने उनसे पूछा, महर्षि उस दिन जो मैंने दृश्य देखा था, पिछली बार जब आया था, उस दृश्य का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं, वो क्या था? अब महर्षि रमन बता रहे हैं उनको कि तुम गुरु का स्वरूप देखना चाहते थे, तो तुमने देखा गुरु निराकार सत्ता है, आकार गुरु नहीं है, तो निराकार सत्ता है, वो गुरु है, तो तुमने उस गुरु के असली स्वरूप का, उस निराकार सत्ता का दर्शन या अनुभव किया। तो इस प्रकार गुरु खुद ईश्वर ही है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है, ये बात इस उदाहरण से और महाराज जी के इन वचनों से ये बात सिद्ध होती है। अब दूसरी बात आती है कि गुरु की आवश्यकता क्या है। इसके बारे में महाभारत में एक श्लोक आता है, धर्मस्य तत्त्वम् निहितम् गुहायाम् महाजनो येन गता सा पंथ। धर्म को समझना या धर्म तत्व को जानना ये बड़ा ही गहन विषय है। महाजनो येन गता सा पंथ, लेकिन जिस रास्ते से होकर सत्पुरुष गए हैं, महापुरुष गए हैं, उस रास्ते को व्यक्ति जब जानता है तो धर्म को समझना बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए गुरु उस मार्ग को तय करके दिखाता है। महाजी खुद कहा करते थे, प्रेमी इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी, ऐसी कोई बात नहीं की जो इन्होंने अपने जीवन पर घटाई ना। तो गुरु के जीवन को यदि बारीकी से देखा जाए, देखने को ना मिले तो उसको बारीकी से उसका अध्ययन किया जाए, तो आपको जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है वो तो सब उनके जीवन से ही प्रूव हो जाएगा कि ये बात बिल्कुल सत्य है। तो जो गुरु जिससे हमारा संबंध बनता है वो तो सब जानते हैं, गुरु बनाते ही इसलिए हैं कि जो उसकी आज्ञा है उसका हम पालन। तो गुरु के मार्गदर्शन अनुसार चलने से होता क्या है, या गुरु की आज्ञा पालन करने से होता क्या है, तो खास बात क्या होती है? हम सब जानते हैं कि जब से हमारा जन्म हुआ है और जब तक हमारा ये शरीर रहेगा, हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध के कारण और अपने स्वभाव के कारण कर्म करने के लिए मजबूर है। हर व्यक्ति, हर जीव जंतु अपने अपने प्रारब्ध और अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए मजबूर है। स्वभाव उसको जबरदस्ती कर्म में डाल देता है, उससे वो बच नहीं पाता। तो गीता में भी भगवान कृष्ण वो कह रहे हैं वहां पर 18वें अध्याय में कि यत अहंकारम आश्रित्य ना योत्से इति मन्यसे मिथ्या एषा व्यवसायते प्रकृति त्वाम नियोक्षति। तो अर्जुन कह रहा था ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो कह रहे हैं जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा दे। तो हम मजबूर होते हैं कर्म करने के लिए, और कर्म करने के लिए ही मजबूर नहीं होते हैं, कर्म इच्छा पीछे रखकर, स्वभाव पीछे रखकर कर्म करते हैं, फिर कर्म के फल की प्रतीक्षा करते हैं, आशा करते हैं। और हम सब जानते हैं पहले तो कर्म करने में ही बड़े बंधन होते हैं, फिर कर्म का फल भोगने में बंधन होते हैं, उसमें भी बेचैनी बन जाती है क्योंकि फल भी बदलता रहता है। इसीलिए कर्म और कर्म के फल के बंधन में हम सारी उम्र बिता देते हैं। तो गुरु आज्ञा पालन करने का मतलब क्या होता है कि कर्म बंधन से आजादी मिल जाए। देखिए गुरु धारण करने का मतलब क्या होता है, गुरु आज्ञा पालन करने का मतलब क्या होता है, तभी तो गुरु की जरूरत है हमको कि कर्म बंधन में बंधे हुए हैं तो व्यक्ति पूरी तरह से निष्काम हो जाता है। गुरु आज्ञा के अनुसार जब ये जीवन व्यतीत करता है तब ये पूरी तरह से निष्काम हो जाता है, अर्थात कामना रहित हो जाता है। जो गुण हम गुरु का पढ़ रहे थे कि जो तृष्णा विकार से मुक्त हो चुका हो वही गुरु कहलाने के योग्य है। तो शिष्य भी जिसने गुरु धारण किया है किस वास्ते धारण किया है, ईश्वर दर्शन के लिए धारण किया है ना, ईश्वर प्राप्ति के लिए धारण किया है और इस वासना के विकार से मुक्त होने के लिए धारण किया है। क्योंकि जब तक वासना रहेगी ये जन्म मरण आपका चलता रहेगा। इसीलिए गुरु का जो ज्ञान है वो आपको कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। वास्तव में गुरु की आवश्यकता, असली आवश्यकता ये है। और जब आपके मन के अंदर कर्म करने की वासना खत्म हो जाती है, देखिए कर्म फिर भी खत्म नहीं होते। कृष्ण तो मुक्त थे ना, लेकिन कृष्ण के कर्म खत्म हुए क्या? राम तो मुक्त थे ना, लेकिन राम के कर्म खत्म हो गए क्या? तो देह से कर्म होते रहते हैं लेकिन उसका प्रभाव जीव के ऊपर नील हो जाता है। कर्म करते हुए भी और कर्म का फल भोगते हुए भी उसका मन जो है वो बिल्कुल पवित्र रहता है, उसके अंदर में कोई रिपिल भी पैदा नहीं है। इसलिए महाजी कहते थे कि यदि एक कामना भी बाकी है, एक इच्छा भी बाकी है, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। यह इनके अनुभव की बात है, ये अपने अनुभव से वो ये बात कह रहे हैं, एक इच्छा भी बाकी है तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो गुरु आपको किस स्थिति में ले जाता है, तो यदि उसकी बात आप गहराई से समझने की कोशिश ही नहीं करोगे, उनके अनुसार चलने की आप कोशिश नहीं करोगे तो इस स्थिति तक कैसे पहुंचोगे? अब एक बात और आती है कई बार हमारे मन में, लोग गुरु कृपा चाहते हैं। जिसको देखो जो गुरु धारण करता है तो उसकी गुरु कृपा चाहता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि गुरु कृपा हमको चाहिए क्यों। हम ये नहीं जानते कि गुरु कृपा हमको चाहिए क्यों। आम व्यक्ति जो देखा होगा संसार में, आम गुरु जो देखा होगा आपने, वो यही होते हैं। गुरु कहता है कि फिक्र मत करो तुम्हारा काम हो जाएगा, फिक्र मत करो सारे दुख मैं तुम्हारे दूर कर दूंगा, बस उनको दक्षिणा मिलती रहनी चाहिए, उनकी पूजा होती रहनी चाहिए। तो गुरु शिष्य में संबंध क्या है, वो दुकानदारी का संबंध, लेने देने वाला संबंध। लेकिन वास्तव में गुरु कृपा क्यों चाहिए होती है? तो मां जी की वाणी कह रही है, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। गुरु आया क्यों है? इस ईश्वर ने ये कृपा क्यों की है कि उसने गुरु रूप में अवतार लेकर हमारे सामने प्रकट हुआ है? कि मैं दुखी हूं ये अंतर्यामी ईश्वर जानता है मेरे बारे में। ईश्वर दुखी नहीं है, मैं दुखी हूं, सब कुछ करके भी दुखी हूं। मैं अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता हूं, अच्छी से अच्छा ईमानदारी से व्यवसाय कर सकता हूं, अच्छी तरह से अपने बच्चों का पालन कर सकता हूं, ये तो मैं कर सकता हूं, लेकिन बेचैनी से मुक्त रहता हूं। सारे कार्य करता हूं लेकिन बेचैनी युक्त रहता हूं, बेचैनी से मेरी मुक्ति कभी नहीं होती। तो इसी बेचैनी को गीता या ये वाणी जो है वो दुख करके कह रही है। दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। इस दुखी जगत से उस जीव का उद्धार करने के लिए सदगुरु उसके सामने आया। तो गुरु कृपा किस रूप में चाहिए? गुरु कृपा इसी रूप में चाहिए कि दुख से मुझको परमानेंट छुटकारा मिल जाए। और हम सब जानते हैं कि दुख का कारण क्या है, मेरी अपनी ही इच्छा होती है। आप कोई भी किसी तरह की इच्छा मन में पाल लीजिए, दुख शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि मन के अंदर इतना शोधन हो जाए या मन का इतना पवित्र हो जाए जिसमें से वासना का उठना ही बंद हो जाए। ये कब होगा? जब आप पूर्ण तृप्त हो जाओगे, आपको ऐसी चीज मिल जाएगी जहां आप पूर्ण संतोष को प्राप्त हो जाओगे, उसके बाद तृष्णा के अंदर उतनी ही बंद हो जाएगी। क्योंकि कोई कमी महसूस करते हो तब इच्छा होती है ना। जब पूर्ण तृप्त हो गए आप, इच्छा का उठना ही बंद हो जाएगा। तो गुरु कृपा इस स्थिति की प्राप्ति के लिए चाहिए। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु हमने संसारी कामों की सिद्धि के लिए या बिगड़े काम बनाने के लिए धारण नहीं किया। इस वासना रूपी लोक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु हमने धारण किया। अब एक बात और हमारे मन में आती है, महात्मा मंगत राम जी तो इस समय संसार में उपलब्ध नहीं। शरीर रूप में उपलब्ध ना होने के पश्चात भी क्या वो हमारे गुरु हो सकते हैं? या ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बढ़ने के लिए हम ऐसे पूर्ण गुरु की प्राप्ति के लिए सारे संसार में घूमते रहे और फिर जब कहीं मिल जाए तो सोचे कि हाँ अब हम ईश्वर मार्ग पर चलेंगे, अब गुरु मिल गया। या जो पूर्ण ऋषि हो जाता है वो किसी का भी गुरु हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ये बड़े काम की बात है। इसके बिना फिर यही जो गुरुडम फैला हुआ दुनिया में, ये इस बात का ज्ञान ना होने के कारण हम गुरुडम में फंस जाते हैं और जिंदगी हमारी खत्म हो जाती है। अब देखिए नानक वाणी क्या कह रही है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बड़ा स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। महेश्वर यदि हम देवता को कहें तो देवता भी ब्रह्म ज्ञानी को खोजते हैं। और नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। और नानक कह रहे हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान है, वो खुद ईश्वर है, खुद परमेश्वर। इसलिए उपनिषद में आया ब्रह्मवित ब्रह्ममेव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इसीलिए गुरु को देह करके नहीं देखा जाता। दिखाई तो हमको देह ही पड़ेगी, लेकिन जो विचार है हमारा, जो हमारी बुद्धि है, उससे हम ये समझते हैं ये मनुष्य नहीं है, ये ईश्वर है, ये खुद साक्षात ब्रह्म है। एक बार महर्षि रमण के शिष्य थे मेजर चैडविक, उन्होंने महर्षि रमण से पूछा कि लोग कहते हैं कि आप सुब्बरामैया के अवतार हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार हैं, राम विष्णु के अवतार हैं, जैसे कहते हैं ऐसे दक्षिण भारत में सुब्बरामैया बोलते होंगे, किसी को पता नहीं किसको बोलते हैं। तो लोग कहते हैं कि आप सुब्बरामैया के अवतार। अब देखो महर्षि क्या उत्तर देते हैं, ये बड़ी ही अजीब और गरीब बात होती है हम लोगों के लिए, लेकिन इसके पीछे बड़ा गहरा तथ्य होता है। वो कहते हैं अवतार ईश्वर का आंशिक प्रकटीकरण है। अवतार ईश्वर का आंशिक प्रकटीकरण है, जबकि ज्ञानी अर्थात जो गुरु है यानी स्वयं ईश्वर है। और देखिए अवतार और गुरु में कितना भेद है। अब राम थे अवतार थे ना, लेकिन राम के गुरु कौन थे? विश्वामित्र तो नहीं थे भाई, वशिष्ठ गुरु। कृष्ण अवतार थे ना, लेकिन कृष्ण के गुरु कौन थे? दुर्वासा। तो अब बताइए, यदि वो जन्म से ही पूर्ण ब्रह्म थे, फिर गुरु धारण करने की जरूरत क्यों पड़ी? महर्षि रमन की बात समझने के लिए वो आपको एग्जाम्पल तो देखना पड़ेगा ना। तो वो कह रहे हैं जो अवतार है वो उसके अंदर ईश्वर की आंशिक शक्ति है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म ऋषि है, जो गुरु है, वो खुद ब्रह्म। मां जी की वाणी में भी आती है, देखो ये बात महर्षि रमन कह रहे हैं, मां जी की वाणी में भी आप जब पढ़ेंगे इसमें एक आता है वहां राम कृष्ण और गुणी बहु, राम कृष्ण और गुणी बहु सब संतन के शिष्य, ये सारे संतों के शिष्य हुए। ऊंची घाट है साध की आलख पुरख का भेष। जो साध का मतलब यहां पे ब्रह्म ऋषि से, जो ब्रह्म ऋषि है, जो ज्ञानी है, वो तो उस अलख पुरख का भेष ही, अर्थात अलख पुरख खुद ही वो प्रकट हुआ है। इसीलिए गुरु के बारे में कोई छोटी कल्पना रखना, ये ज्ञानी लोग क्या कहते हैं उनके स्टेटमेंट हमको सीखने पड़ते हैं। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि समाज में बहुत चीज आप देखोगे, कोई किसी को बड़ा बताएगा, कोई किसी को बड़ा बताएगा। आपने यदि ओरिजिनल चीज सुनी है शास्त्रों की तो आप भ्रमित नहीं होगे। एक और देखिए, महर्षि रमन से एक ने प्रश्न किया, क्या गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक नहीं है? ये बड़ी बारीक बातें हैं, ये आपको गाइड करेंगी। वो तो प्रश्न पूछता है, क्या गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक नहीं है? और महर्षि क्या कहते हैं, क्या तुम गुरु से पृथक हो? क्या तुम गुरु से अलग हो? भक्त कहता है, क्या संग लाभदायक है? अब महर्षि क्या कहते हैं, लोग क्या तुम्हारा आशय भौतिक संबंध से, मतलब शारीरिक संबंध से, क्या तुम्हारा आशय भौतिक संबंध से है? इससे क्या लाभ है? मन ही मुख्य है, मन से संपर्क होना आवश्यक है। यहां आके पता लगता है, पूर्ण गुरु को यदि किसी ने अपनाया है जीवन में तो मन से उसका संबंध निरंतर बना रह सकता है, यदि वो उसको अंतर्यामी समझ रहा है और उसकी शिक्षा को ईश्वर की शिक्षा करके मान रहा है और उसके अनुसार जो चल रहा है, उस व्यक्ति का निरंतर मानसिक संपर्क गुरु के साथ बना रहा है और मन ही मुख्य है, मन ही मुख्य। ये देखिए कि ये जो रियल गुरु हैं उनके डायलॉग्स ये हैं, उनके वार्तालाप ये आपको बता रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि हम इस नाम रूप के चक्कर में ना पड़ जाएं, बड़ी दुनिया भ्रमित होती है। एक ऋषि यदि हो जाए पूरी धरती पर, ऐसी महर्षि रमन नहीं करेंगे गुरु केवल एक है वो परमेश्वर है, एक ऋषि भी धरती पर हो जाए वो पूरे विश्व का गुरु रह सकता है, हो सकता है, इसीलिए उसको जगत गुरु कहते हैं। लेकिन कब तक? जब तक लोगों के अंदर उसके प्रति श्रद्धा बनी रहे कि ये ब्रह्म ऋषि, इसलिए वहां देश काल का फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, ये जो गुरु का आकार की बात आती है तो लोग समझते हैं कि गुरु के आकार की उपासना करने से लाभ होता है। तो गुरु का जो आकार है वो ध्यान रखिए, वो मार्गदर्शन के लिए, ना कि उपासना। दुनिया का कोई गुरु ऐसा नहीं हुआ जिसकी ओरिजिनल बात उपलब्ध हो लिखित में, जिसने कहा ये हो कि मेरी देह की पूजा करो। हर गुरु ने उपासना के लिए शिष्य को मंत्र ही दिया है। और महाजी की वाणी भी कह रही है, सतगुरु तो अंतरमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ सुधार। अर्थात तेरा अंदर का द्वार बंद है, क्यों बंद है, क्योंकि मन की गति बाहर की ओर है। जब गुरु रूप में या ईश्वर रूप में तू सिद्ध मंत्र का जाप करता है, तो अब तू ईश्वर का संग कर रहा है, गुरु की आज्ञा पालन कर रहा है, तो ये जो तेरी प्रक्रिया है, अब ये मन तेरा अंदर जा रहा है, अंदर रस ले रहा है, अंदर की सोच रहा है। तो जब हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु के अनुसार हम जब चिंतन करते हैं, तो मन की क्रिया हमारी आंतरिक हो जाती है। इसीलिए इसको इंटरनल वे कहा जाता है। ईश्वर का मार्ग क्या है, ये इंटरनल वे। संसार का मार्ग क्या है, ये एक्सटर्नल वे। इसमें मन की गति, इंद्रियों की गति बाहर की होती है, जहां भटकन है, जहां परिवर्तन है, जहां नाश है, जहां दुख है, जहां क्लेश है। इसीलिए जो हमारा सांसारिक जीवन है, ये क्लेश युक्त जीवन है, इसलिए इसको विकारी जीवन कहा जाता है, ये विकार युक्त जीवन है। और जो आंतरिक जीवन है, ये देवता का मार्ग है, ये ईश्वर का मार्ग है। इसीलिए पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार यदि आप अंदर नहीं जा रहे हो, अंदर पहुंचोगे कैसे, कौन सा भालेगा? अरे अंदर यामी ईश्वर जो गुरु रूप में प्रकट हुआ है, उसकी बात ही नहीं मान रहे हो, अपनी बुद्धि लगा रहे हो उसमें, नहीं मैं तो ये मानता हूं, मैं तो ये मानता हूं, समर्पण ही नहीं है वहां पर, तो अंदर कैसे जाओगे, जा ही नहीं सकते। इसीलिए रामायण में भी आता है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूप। भगवान राम कह रहे हैं कि मेरे दर्शन का फल क्या है, भाई गुरु दर्शन का फल क्या होता है, जीव पाए निज सहज स्वरूप। जीव अपने असली रूप को पहचान लेता है, और असली जीव के असली रूप का ही नाम क्या है, ईश्वर। तो मैं हूं ईश्वर, लेकिन केवल इस वासना के चक्कर में पड़कर, लोगों के चक्कर में पड़कर मैं सारी जिंदगी ये मुसीबत झेलता रहता हूं, और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता हूं। एक पारसी महिला शिष्य हुई है महर्षि रमण की, उनका नाम मिसेस रोडा था। उन्होंने अपना मकान एक महर्षि रमण आश्रम के पास ही बना लिया था, वहीं उनकी इच्छा थी रहने की। तो उनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई, किसी दिन मैं महर्षि रमण के चरणों में अपना सिर रखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। लेकिन यदि कभी आप जाएंगे रमण आश्रम में, तो देखेंगे कि जहां महर्षि रमण बैठा करते थे, वहां पर एक ब्रास का जंगला बना हुआ है, उसके अंदर कोई जा नहीं सकता, तो इसीलिए लगाया गया था ताकि कोई उनके पैर स्पर्श ना कर पाए, उनके पैर छूने की परमिशन किसी को नहीं थी। तो इस महिला के अंदर क्योंकि तमन्ना पड़ रही थी, तो एक दिन उसको मौका मिल गया। सुबह वहां 7:30 बजे ब्रेकफास्ट होता है, तो महर्षि जब ब्रेकफास्ट के बाद जब अपने कमरे में आए, तो महिला ने देखा कि महर्षि रमण बिल्कुल अकेले हैं। तो धीरे से उनके पास तो वो बढ़ी, तो महर्षि रमण ने पूछा क्या बात है। अब वो झूठ कैसे बोले महर्षि रमण, तो उसने अपनी इच्छा बता दी कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरणों में सिर रखकर आपका आशीर्वाद प्राप्त करूं। अब देखो महर्षि रमण क्या कहते हैं, देखो गुरुओं की बातें संसारों के मुकाबले में अजीब और गरीब होती है। अब वो कहते हैं अपने पैर दिखाकर, ये गुरु के चरण नहीं है, गुरु महेश खुद कह रहे हैं ये गुरु के चरण नहीं है। अब उसके सीने के राइट ओर वो उंगली से इशारा कर रहे हैं कि गुरु के चरण यहां है, गुरु के चरण उंगली से बता रहे हैं यहां है, अपने मन को यहां गुरु चरणों में लीन करो। अब ये गुरु का मार्ग है, हम पैर छू के आशीर्वाद चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, लेकिन गुरु क्या कह रहा है। इसीलिए पूर्ण गुरुओं की बातें पढ़ने में सीखने में बड़ा ही अच्छा मार्गदर्शन करती है। और देखिए, एक उनकी शिष्या हुई है, उसका नाम था शांतम्मा। वो लेडी कुक थी, उनके जो महर्षि आश्रम की जो रसोई थी उसमें वो काम करता था। तो एक दिन महर्षि से बोली वो, महर्षि दिन भर मैं रसोई में लगी रहती हूँ और लोग आपके सामने बैठ के आंख बंद करके साधना करते हैं, आपके चरणों में बैठे रहते हैं, तो मेरी भी इच्छा होती है, मुझको भी मौका मिलना चाहिए कि मैं भी आपके सामने बैठकर ध्यान करें। अब महर्षि रमण कहते हैं उसको कि यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वही काम करती रहा करो और ध्यान गुरु का रखा, केवल ध्यान में गुरु चाहिए आपके, बस फिजिकली आपकी प्रेजेंस उसके आगे जरूरी। महाराज जी की वाणी भी देखो क्या कह रही है, सत्पुरुषों की बातें देखो एक जैसी होती है। हाथ पांव नित कर्म में, मन में साचा राम, अनन भगत कर पूजिए, मिटे 84 जाम। इस 84 लाख में इस तरह छुटकारा हो जाएगा कि हाथ पांव कर्म में रत रहते हुए तेरे अंदर मन में ईश्वर का नाम का ध्यान, ईश्वर के मंत्र का ध्यान, ईश्वर का ध्यान बना रहना चाहिए। इसीलिए ये जगह और महाजी की वाणी कह रही है, उठत बैठत प्रण एको धारी, एक पलक ना विसरे सतरूप धारी। तो धीरे धीरे करके हमारी आदत बन जाती है, कर्म करते हुए भी हम ईश्वर का ध्यान रख सकते हैं, ये संभव है, ये सत्पुरुषों ने करके दिखाया है। इसलिए ये ना सोचे कि जब काम करूं तो 100% ईश्वर भूल जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप ईश्वर की गुरु की आज्ञा पालन करोगे, उसके साथ जब जीवन बनाओगे अपना, अब वो खुद पता लग जाएगा, गुरु कोई असंभव बात नहीं कहते, वो वही बात कहते हैं जो प्रैक्टिकली हो सकती है। आज हम जिस स्थिति में, उस स्थिति में नहीं होगा ये बात, लेकिन फिर भी आप देखोगे स्कूटर ड्राइव कर रहे हो तो आपके अंदर मंत्र चलता रहेगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा, उसका अभ्यास होगा तो आपको पता लग जाएगा। और मंत्र चलने का मतलब है गुरु के साथ मेरी, मेरा मन जो है वो जुड़ा हुआ है, कर्म करते हुए भी जुड़ा हुआ। एक की और बड़ी खास बात है, यदि शिष्य की जरूरत है, यदि शिष्य की वास्तव में आवश्यकता है, तो शरीर रूप में ना होने पर भी गुरु उस शिष्य की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है। वो कहीं भी किसी अवस्था में प्रकट हो सकता है। जब गीता खुद कह रही है कि अजो अपि सन अव्य आत्मा भूता नाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माया, इसका मतलब मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, तो इसलिए कोई बंधन है क्या? नहीं तो कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में प्रकट होकर यदि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, आप भटक रहे हो तो आपका मार्गदर्शन कर देगा, लेकिन जरूरत वो समझेगा तभी वो मार्गदर्शन करेगा। इसके लिए मैं आपको दो उदाहरण देता हूं ताकि आपको मेरे विश्वास आ जाए ये बात, ये कोई ऐसी कहानी किससे नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब उनकी रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो गई, उसके बाद ये भारत भ्रमण के लिए निकले, सन्यासी तो हो चुके थे जब, तो ये गाजीपुर पहुंचे। तो गाजीपुर में पवाहरी बाबा यहाँ एक साधु रहा करते, इनसे उनकी भेंट हुई। जब बातचीत हुई तो वो राजयोग के पर, राजयोग पर वो चलने वाले थे, वो स्मार्ट पर चलते थे। तो विवेकानंद के अंदर भी इच्छा हुई कि मेरे गुरु ने राजयोग की तो दीक्षा मुझे दी नहीं, तो उन्होंने पवारी बाबा से प्रार्थना की कि आप मुझे राजयोग की दीक्षा दे दो। भ्रम है मन में आ जाता है, बड़े बड़े विचारवानों के आ जाता है कई बार। तो खैर अगले दिन सुबह का टाइम डिसाइड हो गया, उन्हीं की सुबह को आ जाना। तो विवेकानंद जब सुबह को उठे जाने के लिए, जैसे तैयार हुए तो क्या देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस सामने खड़े हो गए। अब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नरेंद्र तेरे अंदर कोई कसर बाकी नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए तेरा आगमन हुआ है वो काम जब तक कर नहीं लेगा तेरा काम अंदर का पूरा नहीं होगा। लेकिन तेरे अंदर कोई कसर नहीं आता, तुझे किसी अन्य ज्ञान की जरूरत नहीं। खैर जब फिजिकली खड़े होकर गुरु कह रहा है तो कैसे शिष्य अवज्ञा कर सकता है, मान ले कोई बात नहीं कह सकते। लेकिन बड़े ही हाथी थे वो, यदि बचपन की स्टोरी पढ़ो विवेकानंद की, इतने हाथी थे। सिक्स क्लास में जब पढ़ते थे तो एक मिस्टेक कर दी कोई उन्होंने, तो टीचर ने उनका कान पकड़ा, लेकिन माने नहीं, वो कान उखड़ गया, खून बहने लगा, तब भी नहीं माना। मतलब इतने हटी स्वभाव के। क्या हुआ अगले दिन, फिर उनके मन में एक संकल्प आ गया, अरे ये तो मेरे मन का संकल्प, जैसे सपना देखते हैं ऐसे ही प्रकट हो गए होंगे, ये कि वास्तविकता तो हो नहीं सकती, आ गया मन में संकल्प। फिर वो जाने को तैयार अगले दिन, फिर रामकृष्ण परमहंस खड़े हो गए, फिर उन्होंने वही बात कही। ये प्रक्रिया कई दिन चलती रही इनकी, और ये सारा वृतांत मैंने इनकी एक पुस्तक थी लाइफ ऑफ विवेकानंद बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स, उसमें ये स्टेटमेंट विवेकानंद ने खुद दिया था, वो उसमें लिखा हुआ, वो मैंने पढ़ा। अब बताइए जरा, ये बात ऐसे ही नहीं है। और देखिए दूसरी घटना, शारदा माँ, सब जानते हैं कि दोनों की शादी हुई थी, लेकिन शारीरिक संबंध उनका पति पत्नी का कोई भी नहीं था। तो उन्होंने उनके लिए चार कंगन बनवाए थे रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी के लिए, वही वो पहने रहती, एक लाल किनारे की धोती पहनती थी। जब रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो गई तो उसके बाद, जैसे कि बंगाल में परंपरा है कि सफेद वस्त्र पहनती हैं और ये सारा जो है जो कुछ पहनते ऑर्नामेंट्स होते हैं जो भी, ये सब उतार देते हैं। वो जब अपने कंगन उतारने लगी और मन में सोच रही थी कि लाल किनारी धोती उतार के मैं सफेद धोती में पहनूंगी, तभी रामकृष्ण परमहंस सामने खड़े हो गए। अब कहते हैं, शारदा तू क्या समझ रही है मैं चला गया, बस तू ये समझ ले तेरे बराबर वाले कमरे में मैं कह रहा, तूने ये कंगन कभी नहीं उतारना और ये लाल किनारी की धोती भी तुम्हें नहीं पा। अब देखिए, जिनसे गुरु का जीवन मरण का संबंध है, ये देखिए ना, उन्होंने जीवन लगाया गुरु के लिए, शारदा माने पूरा जन्म अपना लगा दिया उनके लिए, जो है युवा अवस्था में ये नरेंद्र उनके पास आ गए थे, इन्होंने भी पूरा जीवन लगा दिया, तो ऐसे शिष्य के लिए गुरु मार्गदर्शन नहीं करेगा, जरूरत होगी तो सामने खड़ा होकर मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वो ब्रह्म है भाई, वो आदमी नहीं है। एक उदाहरण यहां भी सुनाता हूं मैं आपको, मैं पहले आया करता था मार्च के महीने में आता था, ताकि यहाँ कोई ना हो एकांत में। उस समय ये बीच का कमरा ये छोटा सा था, छोटी सी कुटिया थी, तो इसमें एक नरेंद्र जी थे महाराज जी के शिष्य अम्बाला के, वो इसमें रिटायरमेंट के बाद 3 साल रहे थे। तो मैं आया तो मार्च महीने में उन्हीं के पास ठहर गया। एक रात को क्या हुआ, उसका दरवाजा खुलता था तो चूं चूं करके आवाज करता था, लकड़ी का दरवाजा था। रात में मेरी करीब ऐसी 12:30 आंख खुली होगी, क्योंकि पहले बिजली होती नहीं थी, 9 बजे सो जाते थे हम, सुबह 2:30-3 बजे उठ जाते थे। तो जैसे ही वो दरवाजा खुला मेरी आंख खुल गई, थोड़ी देर बाद फिर वो अंदर आ गए, अंदर आके लेट गए। रात में फिर वही, फिर गए होंगे बाहर, फिर मेरी आँख खुल गई। 3 बार ऐसा हुआ। खैर सुबह को जब उठते थे 2:30-3 बजे उठे अपने, 2 घंटे मेडिटेशन करते थे, सुमन किया अपने, उसके बाद जब दिन निकल आया तब मैंने पूछा, उनका प्रेमी जी आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, क्या बात है रात आप कई बार उठे, मेरी उनसे काफी इंटीमेसी थी। तो उन्होंने अपने दिल की बात मुझे बताई, बोले शरीर से मैं बिल्कुल स्वस्थ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ मैं अकेला रह रहा हूँ। उस समय ना ये बाउंड्री वॉल होती थी, जंगली जानवर भी अंदर आ जाते थे, एक अनजाने व्यक्ति को भय भी यहाँ पे लगता था। तो बोले कि मैं यहाँ सारी जिंदगी गृहस्थी में रहा, अब यहाँ मैं परिवार छोड़ अकेला रह रहा हूँ, मेरे अंदर कई बार बड़ा भय लगता है, कोई मुझे मार डालेगा यहाँ पे, मेरा मेरी रक्षा कौन करेगा, भय है मन के अंदर। तो बोले कि रात मेरे मन के अंदर ये भय इतना बढ़ गया कि मैं परेशान हो गया कि मेरी रक्षा कौन करेगा। तो मैं ये जो कुटिया के नीचे प्लेटफॉर्म छोटा सा है, तो बोले इसी प्लेटफॉर्म पे मैं टहला था और रोता जा रहा था मैं। तभी क्या हुआ, सामने ये पीपल का जो पेड़ है इसके मुझे के पास में ही महाराज जी खड़े हो गए, साक्षात खड़े हो गए, और बस उन्होंने हाथ से इतना कहा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। उसके बाद मैं अंदर आया, मेरे दिल में चैन हो गया। और आप देखिए, ये कहानियां नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, और ऐसी कितनी चीजें मैं जानता हूं, मैं बता नहीं सकता कितनी बात। इसीलिए ये पूर्ण गुरु का आसरा मिल जाना, उसकी तालीम मिल जाना, ये आप लोगों का ये परम सौभाग्य है। मैं कहूंगा कि जीवन का यदि सबसे परम सौभाग्य कोई ये वस्तु कीमती मिली है, तो ये वक्त मिला है जो आपको पूर्ण गुरु की तालीम मिली, जो आपको यदि आपने इसके अनुसार जीवन व्यतीत करने की ठानी, तो ये आपको ईश्वर तक पहुंचाकर ही छोड़ेगी, चाहे इसके लिए आपको दो जन्म क्यों ना लेने पड़े। लेकिन निश्चय नहीं टूटना चाहिए, निश्चय पक्का रहना। अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम जो मिनिमम प्रोग्राम गुरु कह रहा है उसको तो फॉलो करें। महाराज जी कह रहे हैं प्रेमी 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटे सायकाल सिमरन करना लाजमी है। खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना, ये लिखकर दे रहे हैं समतरदास। सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है, पूरा जन्म ही आपने नष्ट कर दिया। इसलिए ये हाईएस्ट कैटेगरी का कर्म है ये सिमरन, ये कोई लापरवाही की चीज नहीं। जो लापरवाही करता है ये सब जानने के बाद भी, इसका मतलब उसकी बुद्धि बड़ी कमजोर बुद्धि है, बुद्धि पर तरस आना चाहिए। सब कुछ जानकर भी जिंदगी बर्बाद करने की ओर जो जा रहा है तो उसको कौन बता रहा है। इसलिए ये जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है इसको हम अवेल करें, और जो ज्ञान है गुरु का उसके साथ सोचें। अंत में एक बात, एक सेंटेंस कहकर मैं खत्म करूंगा। क्राइस्ट ने एक चीज कही, ये बातें इसलिए आपको बताई जा रही हैं क्योंकि हमको फिजिकली गुरु उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम भ्रमित कई बार हो सकते हैं। तो क्राइस्ट क्या कह रहे हैं देखो, ब्लेस्ड आर दोज हु हैव सीन एंड बिलीव, वो लोग भाग्यशाली हैं जिन्होंने देखा है गुरु को और विश्वास किया है। बट मोर ब्लेस्ड आर दोज हु हैव नॉट सीन एंड बिलीव, जिन्होंने देखा नहीं है पर फिर भी विश्वास किया है, वो लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं। इसलिए हम कमजोर बनकर यहां से ना जाए, ईश्वर का आशीर्वाद लेके जाए, ईश्वर का विश्वास लेके जाए जो गुरु रूप में अंदर प्रकट होकर हमारा मार्गदर्शन। तो बस एक चीज मैं और आपसे कहूंगा कि कई बार स्वप्न में भी गुरु के दर्शन हो जाते हैं, कई बार स्वप्न में भी गुरु के दर्शन हो जाते हैं। तो गुरु का स्वप्न में दिखाई पड़ना भी, रामकृष्ण परमहंस कहते थे गुरु का स्वप्न में दिखाई पड़ना ये सच्चा स्वप्न होता है, ये गुरु की कृपा है आपके ऊपर यदि वो आपको स्वप्न में ही दर्शन दे दे। और इसके लिए मैं आपको केवल एक महाराज जी के जीवन से घटना सुना देता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि सत्य का दर्शन वास्तव में सत्य होता है। लाल बहादुर शास्त्री का नाम तो सुना ही होगा, प्राइम मिनिस्टर थे। उनके चाचा हल्द्वानी में रहते थे, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव। तो उनकी श्रद्धा उस समय एक सोमाहरी बाबा होते थे, वहीं पर ये है ना नीम करौली बाबा जहाँ है में सोमाहरी बाबा उस समय हुआ करते थे। तो एक दिन वो उनके पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की मुझको अपनी शरण में ले लीजिए, क्योंकि सोमाहरी बाबा ने कहा अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। बात खत्म हो गई, उनको संतोष हो गया अभी नहीं, आगे वक्त तो मेरा जरूर आएगा। उसके बाद 16 वर्ष बीत गए। 16 वर्ष के बाद उनको लखनऊ का वो सेक्रेटरी थे नगर पालिका में, तो उनका टूर लगा लखनऊ का। लखनऊ में जब वहाँ रात को सो रहे थे तब उनको फिर सपना आया, वहाँ पर सोमहारी बाबा वहाँ पर सपने में उनके आ गए। अब वो फिर वो सपने में प्रार्थना कर रहे हैं उनको, अब वो इशारा कर रहे हैं कि ये तेरे गुरु हैं, ये तो दूसरे गुरु खड़े हुए हैं, वो कोई नहीं थे, ये महात्मा मंगत राम जी थे, उनकी ओर इशारा, ये तेरे गुरु हैं। बस सपने टूट गया उनका। उसके बाद फिर वो ऐसे ही चलता रहा। फिर 16 वर्ष बीत गए, फिर 16 वर्ष बीत गए। क्या हुआ, एक दिन महाराज जी जब ये पाकिस्तान बन गया तो इधर ये नॉर्थ के होते हुए कुछ शिष्य उनके हल्द्वानी सेटल हो गए, नंदलाल जी थे, कुंदनलाल जी थे और भी कुछ प्रेमी थे, महाराज जी शिष्य वहाँ हल्द्वानी पहुँच गए। तो महाराज जी ने प्रोग्राम बनाया हल्द्वानी जाने का, हल्द्वानी को शाम को जब सत्संग हुआ, सत्संग के पश्चात जो भी प्लेस उन्होंने डिसाइड किया होगा, सत्संग खत्म हुआ तो ये भी बैठे हुए थे पीछे, उनको नंदराज जी जानते थे इनको, तो उन्होंने इनवाइट किया होगा, ये भी वहाँ चले गए थे। तो जब सब प्रेमी चले गए तो ये दूर बैठे हुए थे, महाजी सामने बैठे हुए थे। तो महाजी ने कहा प्रेमी पास आओ, तो पास आके बैठे। अब इन्होंने पहचाना नहीं महाराज जी को, सब तो 16 साल पुराना था, भूल गया। तो अभी कई प्रेमी महाराज जी से दीक्षा के लिए कह रहे थे, तो इन्होंने भी देखा देखी महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी इनको भी चरणों में जगह दीजिए। तो महाराज बोले प्रेमी ये तो आप तो जानते नहीं, कोई गारंटी लाओ। तो बोले कि महाजी गारंटी तो मेरे पास कोई नहीं, आप मुझको मुझको कृपा कर दीजिए। अब देखिए महाजी क्या करते, प्रेमी तेरे वास्ते ही ये यहाँ आए हैं, प्रेमी तेरे वास्ते ही ये यहाँ आए हैं। दोनों तो एक दूसरे की शक्ल देखी नहीं करती। उन्होंने अगले दिन सुबह को दीक्षा के लिए बुला लिया, दीक्षा हो गई इनको। तब इनको ख्याल आया कि अरे सोमहारी बाबा ने इन्हीं को तो दिखाया था मुझे, अब 16 साल बाद ये मौका। तो गुरु का सपने में दिखाई पड़ना ये कृपा है ईश्वर की आपको, इसलिए बड़े प्रेमियों की ये कहानी किसने कहाँ तक सुनाया जाए आपको, लेकिन आपका विश्वास बनाए रखने के लिए, देखिए एजम्पशन नहीं, विश्वास का मतलब है सही विश्वास, जीवित विश्वास। ये एक अनमोल घटना है जो आपके साथ घटी है प्रभु कृपा से, तो यहाँ तक आप पहुंच ही नहीं पाए। ऐसी ऋषि भूमि पर इस तरह का ज्ञान मिलना आपको, बिल्कुल शुद्ध, जिसमें 1% भी मिलावट नहीं, ये दुर्लभ भाग्य है, दुर्लभ आपका वक्त है जो आपको मिला है। बस मेरी यही प्रार्थना है इसका जीवन में। Oh, thank you.